Good evening, Namaskar, Om Shanti. Dear viewers, we always ask for inner strength and endurance from God in our prayers, so that we can face challenges and discover peace, love and bliss in this process. Parantu jis prakar pyar, shanti aur khushi mangane se nahi milti, to kya andruni shakti, taakat aur flexibility bhi mangane se mil jati hai? Let us discover how to claim our lost powers of the soul in this session of building inner strength and resilience. Today we have a notable panel of speakers from different parts of the world who shall be sharing their ideas on today's topic. We have Sister Jenna from Washington, D.C., USA, Mr. Louis Gossett Jr., Oscar Award-winning actor from USA, Sister Dennis Lawrence from Germany, and Rajyogini Sister Jayanti from London, joining us shortly. Let us listen to them one by one. Sister Jenna, spiritual mentor, author, host of America Meditating Radio Show, founder and director of Meditation Museums in Washington, D.C., evolutionary leader, and there are several other duties that she performs. Her motive is to empower people and unite them so that we can happily live together on this planet. Let's see what Sister Jenna has to say. Here comes her speech.
Shanti, Namaste. I hope you're enjoying the conference so far and you've been taking a lot of knowledge and inspiration from the speakers before. I'm Sister Jenna from the Brahma Kumaris in Washington, D.C., the good old U.S. of A. We're still locked down, but some of the states are opening up slowly but surely. Things have changed. We're being called for something so new. Education of ourselves, education about God, education about the nature, education about these times. But one of the things that I've been noticing is what can help me to deepen my understanding of myself. With some of the Brahma Kumari teachers that you've heard about the soul, you've heard about God, you might have heard about karma. Yes, it's governing everything. Despite your religious beliefs, our soul is directing everything around us. But more than anything else, our thoughts are in charge. So when I look at a new education for a new era, I focus on what are my thoughts? How am I thinking? And what are these thoughts making me feel? You must be feeling something new emerging from inside of you. You've got to be. This pandemic has asked us to step more inwards to find out who we are. So one of the areas that I look at to find deeper clarity and understanding and forward movement is to be inwards, to be more still. And I appreciate the sound or the mantra of Om. Why I'm offering this is that many of the speakers have said so many beautiful things. And each of us wish to be living, walking, beautiful deities on the planet. And what I mean by that is we wish to be the best human beings in our relationships with one another. But what Om does is that it gives me a sense of clarity, stillness, balance. So what I'd like to do is to take us into just a few minutes of Om, focusing the attention on the energy of the divine. And when we come out of Om, I'll ask you to hold just a minute of silence and then find out how you're feeling. Let's take a deep breath. Relax. Wherever you're sitting in your home, call the family. They'll feel the vibrations. Call a friend. They'll enjoy it. So from here, now, let's go into the experience of Om. Enjoy these next few minutes.
Ooh.
holding that moment of stillness will usher through such clarity and such wisdom. The education that's needed for a new era, virtues, peace, love, compassion, creativity, and joy. This is my wish for you. This is my wish for all of humanity. Let this be the newness that comes out of this. Enjoy the rest of the conference. Thank you so much for having us. Please be safe. Please be kind. And please be opened to always learning something new. Om Shanti.
That was an overwhelming experience, isn't it? Thanks a lot, Sister Jenna. Now there is another surprise from her. She has invited an Oscar award-winning actor to our e-conference, Mr. Louis Gossett Jr. Let us see what Sister Jenna is up to now and what she is asking him. Have a look.
Hi everyone, I'm Sister Jenna from the Ramakumaris in Washington, D.C. and today we have a wonderful surprise guest for the New Education New Era Global Summit. He doesn't need much of an introduction, but I'll share a little bit about our next guest, Lou Gossett Jr., who's an award-winning Oscar winner, has been in award-winning movies such as Officer and a Gentleman, Roots, Fiddler, and one of his latest amazing films or television series, The Watchmen. Today I've asked him what is his idea or his interpretation of a new education for a new era. Lou, welcome to the Ramakumaris Global Summit. I'd love if you could share for our audience what you think this particular time is offering us for a new education in a new era.
Well, I'm so very fortunate to have been around in different lifetimes. It feels like four or five different lifetimes. And I see a similar evolvement from the wars to the Depression to the Holocaust, certain things that have happened to us over and over again. So I have a feeling it's not a new education anymore. It's a return to an old education that continues to be consistent with what we need to be together as a people. We kind of get comfortable with this new feeling. I don't think a building can be built without that strong foundation. And then that strong foundation are the simple things. Taking care of one another, take care of the children, to what you do is for the benefit of the whole, the existence of a power that we must align ourselves with on a daily basis so that we're taken care of properly. And I think that's a new lesson. That's an old lesson.
I have found that people are struggling to take care of each other. You have a wonderful foundation called Eracism, mm-hmm. which is all about ending prejudice and inequality amongst people. I mean, how do we get to that part inside of the soul, Mr. Gossett, where we can stand up for anything that seems like an injustice or a prejudice towards mankind? Because there's an education needed on a really deep spiritual level, don't you think?
Yeah, I agree 100%. I think that I believe in God personally, but I believe in that divine energy. I think we have now sequestered ourselves into a pandemic where we have to be satisfied with one another. We have some work to do internally. And when we see each other, that's all right. It's magic that's happening to this country, this world. We're back to the basics. We need one another. We know sometimes soon that we cannot survive without one another. The things that are in its place that's keeping it from happening is the phrase, I'm better than you are, I'm in charge, what I say goes. We're nothing but mankind. And it's going to take mankind to save mankind.
Mm. What are your thoughts about meditation?
Well, meditation is extremely important because it puts us in the mindset of going there in the first place, getting out of the way of the divine message, getting us receptive of the divine message coming from the higher energy to get out of control of our lives and our feelings. Mm. And let another energy come and take precedence over that and be a humble servant of the divine message on a daily basis. And then we can't get there without divine meditation.
Mm, beautiful. Thank you so much for joining us on the Ramakumaris Global Summit. I think it was a wonderful surprise for you to join in the new education, new era. We're hoping to really bring about some changes in our planet, but definitely changes in ourselves. So thank you so much, and a big, big Om Shanti to you.
Om Shanti. I'm available when you need me.
All right. Take good care. All the best and stay safe.
Great. Very well said, sir. Meditation is indeed very important now. Indispensable, rather. See, everyone is realizing now the significance of a yogi life. Moving forward, we have Sister Denise Lawrence with us today. She joined the Brahma Kumaris organization as a student of Raj Yoga and dedicated her life to spiritual practice and service in 1974 at the age of 23. She is a great orator, author, and filled with lots of spiritual experiences. We invite her to share her insights on today's topic.
Om Shanti. Building inner strength and resilience is probably the real purpose of spiritual practice and meditation. At the Brahma Kumaris, we learn very deep aspects of spiritual knowledge, how to draw spiritual power into the self through meditation, and how to develop virtues as well as spiritual powers. And this is what gives us the inner resilience. I think it is true to say that spiritual practice is undertaken in circumstances of adversity because life is a university, the best we have. And in this university, we are under continuous assessment, and circumstances are the examiners, and we are having this feeling that at each moment, the Supreme Teacher, God, the Supreme Being, is observing us and grading us on how we handle our exams. They can be taking place in the outside world of business, community, the big wide world of all of the activities, and it can also just as well be taking place in that tiny inner world of your own being, the inner world of your mind, your feelings, your heart, and in between there is your community, your family, whether it is your birth family or the family of spiritual practitioners that you live with, whether it is even the family of people that you work with over many years. Always there are karmic accounts. So spiritual practice teaches us about the laws of karma, and that there are many karmic accounts ready to be settled. And so if we want to become free, freedom is an important spiritual virtue and achievement, in fact. So if we want to become free, we want to become light, then it means we need to go through all the different ways in which karmic accounts come up for settlement. I think it is true to say that everyone is feeling that the world is in the process of great change. People are speaking about the new normal. After the lockdown, people are hoping, will we be free from lockdown anytime soon? Some businesses are opening, but already everything is different. And people do not know what to expect when this is all over. And so this is a very ideal circumstance, really, to test our resilience and our capacity for adjustment, adaptability. Most people are feeling, well, we will have to simplify our lives. We will have to take maximum advantage of our inner power and not expect things to be as they were. We should not expect people to be as available to us as they used to be. And we should not expect circumstances to be as easy. When things are more difficult, sometimes a person can feel, I don't think that I am up for this, I don't think that I can manage this. But when you meditate, when you study, what happens is you're taking awareness, you're taking clarity, you're taking energy from the divine, and your perspective on change is different. We look at change as a great opportunity. We learn in our practice to flex with the unexpected. We learn to be in situations that maybe are not fair, maybe are not justified, maybe are not reasonable, but we learn to flex with it anyway. We learn to live with people of many different backgrounds, different cultures, different mentalities and attitudes, which some people would feel this is impossible. Under the eyes of God, anything is possible, provided that you are positive, that you feel that it's possible, you believe in yourself, you believe in your value and your right to be you, in the value of your contribution and the value of the contribution of those who are around you, those who you are serving with, those who you work with, those who you live with. And we create a life as a bouquet of flowers rather than a life as a jungle of thorns. When people are in conflict with each other, in unhealthy competition with each other, then circumstances reflect back to us with painful situations, and we are uncomfortable with ourselves and with each other. So building resilience takes time, and we have been given a lot of time. We have had the opportunity to pass through many different historical situations. We have grown up. We have acquired the wisdom of our own practice and the wisdom of seeing the great ones go before us and watch them, how they handle their situations, whether it's illness, whether it's opposition, whether it's any kind of difficulties from any source, with courage, with fortitude, with a certain amount of humor, because after all, this is called the game of life. When people think of games, they think of cricket and football, and these are competitive sports, no doubt, but the aim of playing the game partly is to win and also to enjoy and to enjoy the people. We have to learn to be a winner who shares the fruits of victory and a loser who can be a good loser, because you win some, you lose some. And all of this adds up to a certain flexibility, a lightness of spirit that allows us to feel that, yes, I am making progress. And as I progress, then all those around me also progress. And so we feel good. Thank you very much, and Om Shanti.
Many thanks to Sister Dennis for your wonderful sharing. Now, last but not the least, a great speaker, administrator, tireless server, healer, and a flying angel is about to come in front of all of you. Sister Jayanti, Director of Brahma Kumaris in UK, Europe and Middle East. In her speeches, Sister Jayanti tells about how to live a spiritual life in a complex world through meditation and God's healing power of love. She is an epitome of power in the form of a woman. She works day and night on several projects in connection with women, empowerment, environment and youth. She is truly a messenger of peace. It is our privilege and honor to listen to her. Here comes Sister Jayanti.
Om Shanti. Aap sabhi ko shanti ki greetings. Sab kuch online aajkal chal raha, to apna education wing ka conference bhi online ho raha hai. Aur aap jante hain ki spiritual education par jo hamara focus hai, isi karan se kyunki values hai ek antrik atma ke sambandh ki baat. To jitna jitna hum spirituality ko samajhte hain, mante hain, jeevan mein dharan karte hain, utna hi apne andar jo education ka laksh hona chahiye, hare ke jeevan mein values mein pragati ho, wo reality ho sakti. Aajkal education to anek prakar ki hai, aur har education mein main manti hoon ki fayda hi fayda hai. Education ke bigar to koi aage व्यक्ति की भी उन्नति नहीं हो सकती, देश की भी उन्नति नहीं हो सकती. परंतु आज के समय में मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत ही आवश्यक है. उसमें भी आज मैं टॉपिक उठा रही हूं कि कैसे आंतरिक शक्ति और रिजिलियंस आत्मा की बढ़ा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के द्वारा. क्यों? क्योंकि आजकल के जो सर्कमस्टेंसेस है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से विश्व भर का लॉकडाउन हो जाए. कोई ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अचानक ही 3 मास के अंदर विश्व की इकोनॉमी इतनी डाउन हो जाए. तो अब और आगे भी अनसर्टेनिटीज का क्या क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं पड़ सकता. तो यदि आत्मा के अंदर अपनी स्वाभाविक रीति से शक्ति है, कोई उसका आधार एक्सटर्नल रीति से नहीं परंतु इंटरनल वो शक्ति है और साथ साथ रिजिलियंस है, तो फिर आत्मा सदा ही अपने वैल्यूज के आधार पर आगे बढ़ सकती, देश में भी अपनी सेवाएं दे सकती, अपने परिवार को भी सुखी बना करके रख सकती. रिजिलियंस शब्द आप हिंदी में खुद ही समझ सकते हैं, परंतु मैं इंग्लिश का ही इसमें प्रयोग करेंगी. परंतु जिस तरह से रबर बैंड होता, आप रबर बैंड को स्ट्रेच करो और वैसे तो कार्य पूरा होने पर वो बाउंस करके वापस अपने ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त कर लेता. परंतु यदि आपने रबर बैंड को उसके कैपेसिटी से अधिक स्ट्रेच कर लिया तो वो टूट जाएगा, वो वापस नहीं आ पाएगा, आपका काम रह जाएगा. इसी तरह से आज के संसार के समय हम देखते हैं कि बहुत ही सारी समस्याएं हैं. गवर्नमेंट भी मदद तो करनी चाहती है हर एक को, परंतु वो भी कहां तक. अनेक और संस्थाएं भी सहयोग देने चाहते हैं, परंतु फिर भी बाहर की सिचुएशन अनुसार और पॉपुलेशन के हिसाब से हमें फिर भी अपना आप खुद सोचना होगा कि हम अपने अंदर रिजिलियंस कैसे बढ़ा सके, ताकि बेशक आज हमारे में इतनी कैपेसिटी ना भी हो परंतु हम उसको आगे बढ़ाते रहें ताकि यदि समस्याएं और भी बड़े रूप को प्राप्त करती जाए. और हो सकता ऐसे भी होगा, क्योंकि पोस्ट COVID-19 नेक्स्ट स्टेज होंगी इकोनॉमिक क्राइसिस, ये तो अभी से ही हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं. बिल्कुल वही नजारा नजर आ रहा. उसके बाद और आगे क्या होगा वो हमें मालूम नहीं, परंतु लगता है कि कलयुग की जो घड़ियां चल रही है वो प्रैक्टिकल अभी कलयुग की अंधेरी रात की सीनरियां नजर आ रही है. तो हम खुद को भी बचा सके, जो हमारे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको भी हमारी तरफ से सहयोग मिले, हमारे समाज को भी कुछ फायदा मिले, हमारे देश को भी कुछ प्राप्ति हो, उसमें हमें अपनी रेजिलियंस को बहुत बढ़ाना होगा। वैसे तो साइकोलॉजी के हिसाब से ये माना जाता है कि यदि बचपन में घर के अंदर या स्कूल के अंदर कोई ऐसे माँ बाप बहन भाई काका चाचा मामा कोई भी हमारी दिल लेने वाला कोई होता, स्कूल में कोई ऐसा अच्छा टीचर होता जो हमारी बात को सुने और बिल्कुल उस बात पर इम्पैक्ट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कभी न हो, जिसको अनकंडीशनल सपोर्ट कहा जाए, नॉन जजमेंटल लव कहा जाए, यदि बचपन में इस प्रकार से कोई व्यक्ति होता तो फिर वो व्यक्ति बच्चे को ऐसे मदद करता जो उसके अंदर फाउंडेशन रेजिलियंस का बहुत जबरदस्त बन जाता। परंतु न्यूक्लियर फैमिली है बहुत करके आजकल, उसमें माँ बाप कई बारी दोनों काम पर जाना होता है, काका चाचा मामा ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कोई इतनी नजदीक नहीं है, तो स्कूल में भी टीचर्स ओवरवर्क्ड अंडरपेड ये सिचुएशन चल रहा, तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिन्हों को ऐसे कोई सहारा मिला हुआ हो जिसके द्वारा उनको रेजिलियंस का फाउंडेशन जीवन में बना रहे। तभी आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के जीवन में भी कई बच्चों को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी आती है, कई बच्चों को न्यूरोसिस भी होते, कई बच्चों को एडिक्शन की हैबिट्स भी शुरू हो जाती, कई बच्चों को तो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता जो वो सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाते। ये आज के समय की बातें हैं। तो ऐसे समय पर अच्छा चलो आज मैं हूं और मुझे बचपन में इस तरह से कोई पालना नहीं मिली है, तो आज मैं अपने लिए क्या कर सकता, या आज यदि हम पेरेंट्स हैं तो ये ध्यान पर रहे कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसे वातावरण बना करके रखें जिससे उनका रेजिलियंस का फाउंडेशन बहुत ही मजबूत बन जाए। एक तो मैं कहेंगी कि खुद को पहले एक्सेप्ट करना सीखें, अपना नेगेटिव साइड को भी हम जानते हैं, अपनी पॉजिटिव साइड को भी जानते हैं, दोनों तरफ और दोनों ही बातें हर एक व्यक्ति के अंदर है। कोई ऐसे आत्मा तो यहाँ इस धरती पर अब तो नहीं है जिसको हम कहें कि देव आत्मा है जिसमें कुछ नेगेटिविटी ना हो, परंतु कोई कितना बुरा भी है कुछ तो उसके अंदर भी कुछ अच्छाई भी है जरूर। परंतु पहले तो मैं यदि अपनी रेजिलियंस कैपेसिटी बढ़ाने चाहती हूँ, मैं अंदर की यात्रा करके मैं अपने दोनों तरफ गुड नॉट सो गुड पॉजिटिव नॉट सो पॉजिटिव दोनों प्रकार की बातों को देख करके क्या मैं खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ये बहुत ही आवश्यक है। यदि मैंने खुद अपने को स्वीकार नहीं किया है तो बाहर की सिचुएशंस मुझे बिल्कुल हिला लेंगी, या बाहर किसी ने थोड़ा बहुत भी कुछ कहा तो भी आत्मा हिल जाएंगी, परंतु अंदर की वो कैपेसिटी है रेजिलियंस की तो हम इन बातों में हिलेंगे नहीं, हम मजबूत अपने फाउंडेशन पर स्टेबल रह पाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहेंगी कि बेशक बचपन में कोई ऐसा न मिला जिसने अनकंडीशनल लव दिया हुआ हो, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत कंडीशंस डालते हैं, आप ये करोगे तो हम आपको प्यार देंगे, आप ये करोगे तो फिर आपको हम पॉकेट मनी देंगे, आदाद आदाद इस प्रकार के कंडीशंस की संसार बिजनेस का संसार चल रहा है। परंतु यदि आज हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से खुद को आत्मा मानते और ये मानते कि आत्मा का अनादि अविनाशी संबंध एक परम पिता परम आत्मा के साथ है, तो जो हमारा संबंध उसके साथ जुट जाता, उस द्वारा जो हमें शक्ति मिलती, जो हमें प्यार प्राप्त होता, वो सदा काल के लिए आत्मा को बहुत ही शक्तिशाली बना लेता, रिजिलियंस कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाती। और ये देखा गया है, जब आत्मा के अंदर रिजिलियंस है तो उसके अंदर करुणा भाव भी होता। रिजिलियंस कैपेसिटी नहीं है, खुद को ही हम स्वीकार नहीं कर पाते, तो हम दूसरों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। करोना वायरस नहीं है, परंतु करुणा, उसके बदले में हम ये सोचे कि कितनी न शुभ क्वालिटी है जिसको हम धारण कर सकें। और करोना वायरस के समय भी यदि हमारे अंदर करुणा होंगी, तो हम औरों के साथ भी बहुत ही प्रेम प्यार से सहयोगी बन करके, उनों के ऊपर भी रहम भावना रख करके, हर एक को हम कुछ न कुछ मदद कर सकेंगे। तो रिजिलियंस से एक तो हमारा करुणा कंपैशन बढ़ता है, एक्सेप्टेंस एक दूसरे का बढ़ता है, और भावना भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि किसके अंदर हम भावना रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो आत्मा की भी उन्नति हो सकती। तो रिजिलियंस से खुद को भी प्राप्ति, परंतु हमारे जो भी साथ में है उन्हों को भी अवश्य प्राप्ति हो पाती। और दूसरा, जो आज आत्मा बिल्कुल निर्बल हो चुकी है, आप सोचो कि सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं और हम उसमें जल्दी घबरा जाते हैं। जो पहले का समय था जिसमें आत्माओं को बिल्कुल अटूट विश्वास होता था परमात्मा में, आजकल हम देखते हैं कि प्रश्न बहुत है परमात्मा के प्रति, क्यों, क्या, कैसे, क्या, ये सब बातें तो बहुत आती, परंतु जो वो दिल का प्यार, वो भावना, वो कुछ नजर कम आती। परंतु उसका भी कारण है, कारण ये कि हम अच्छी तरह से परमात्मा को जान नहीं पाते हैं। जब हम अपने को शरीर मानते हैं, इस देह के इस फिजिकल लिमिटेशंस में आते हैं, तो हम एक दीवार बना लेते हैं जिसमें हमें परमात्मा के वाइब्रेशंस पहुंच नहीं पाते हैं। परमात्मा हमें सब कुछ देने चाहते हैं, परंतु जो हमने इस देह की दीवार बनाकर रखी है, उस कारण से फिर हमें वो वाइब्रेशंस पहुंच नहीं पाते। तो फर्स्ट स्टेप, अपने को हम आत्मा माने। हाँ, ये शरीर इम्पोर्टेंट है, ये हमारा चैरियट है, ये हमारा व्हीकल है, ये हमारा बहुत प्रेशियस वैल्यूबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सब कुछ कर सकते, परंतु आत्मा न होती ये शरीर कुछ कर नहीं पाता। आत्मा शरीर के बिगर भी जीवित है, आत्मा अविनाशी है, परंतु शरीर तो नाशवान है, बिगिनिंग और एंड लिखा हुआ है, बस उस बीच में ये छोटा सा इतिहास होता। तो आत्मा को जानना तब होता जबकि हम अंदर की यात्रा करते और स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा स्टडी करते। मन क्या है, पर्सनालिटी क्या है, संस्कार क्या है, विवेक क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, ये सब बातों की जानकारी मनुष्य आत्मा के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम शरीर के फुल बायोलॉजी को जानते हैं, परंतु आत्मा के बारे में इतना नहीं जानकारी है। तो स्पिरिचुअलिटी में हमें आत्मा को जानना फर्स्ट स्टेप है। और जिस समय हम आत्मा को अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर, और न सिर्फ जानना परंतु उस स्थिति का अभ्यास करना। जैसे छोटा बच्चा है, उसको मालूम नहीं है कि मेरा नाम क्या है, फिर माँ बाप भाई बहन उसके कान में ये डालते रहते हैं, तुम्हारा नाम है ये, तुम्हारा नाम है ये, तुम्हारा नाम है ये, तो वो रिस्पॉन्ड करने लगता। इसी तरह से दूसरा कोई व्यक्ति हमें याद नहीं दिलाएगा कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, मुझे अपने आप को ही स्मृति में रख करके खुद को याद दिलाना होता है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं हूं देही, आत्मा इस शरीर को चलाने वाली रथवान। तो जब आत्म स्मृति का हम अभ्यास करते हैं और अपने को इस देह से न्यारा आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो सहज ही हमें परमात्मा, ज्योति स्वरूप, निराकार, शिव भगवान, उनों की पहचान आती और उनों के साथ जो हमारे दिल की तार जुट जाती, मन को हम एकाग्र करते हैं उनों की याद में, जिसको मन मना भाव कहा जाता। तो जिस समय इस तरह से हम अभ्यास करते हैं, तो फिर परमात्मा की भी जानकारी सहज होने से वो तार जुट जाती और सर्वशक्तिवान के द्वारा जो शक्ति हमें जीवन में धारण करनी है वो हमें सहज सहज प्राप्त होती। आज के समय आप सोचो कि कितनी बातें हमारे सामने आती है, आजकल फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज, पोस्ट ट्रूथ का एरा है, तो उसमें कई बातें सामने आती जिन्हों को हमें समझ में ही नहीं आता ये सच है ये झूठ है। तो परख शक्ति परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त होती। पहले तो हम अपना बुद्धि को बिल्कुल क्लियर रखें, उसके साथ संबंध जोड़े, परंतु जो वो शक्ति देता उससे जैसे ज्वेलर को आई ग्लास होता, मैग्निफाइंग ग्लास होता, वो सच और झूठ हीरे को परख सकता कि व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स। इसी तरह से आत्मा के अंदर जब परमात्मा की याद द्वारा परख शक्ति आती, तो आज के संसार में व्हाट इज फेक, व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज ट्रू, हम अपने आप ही उसका निर्णय ले सकते हैं। तो परख शक्ति बहुत ही आवश्यक है खुद के लिए, परंतु साथ साथ अपने परिवार के लिए। आप सोचिए कि आपके परिवार के सामने भी कितनी समस्याएं आती होंगी, परंतु आपके परख शक्ति द्वारा उन्हें भी मदद प्राप्त हो सकती। और फिर साथ साथ आपका जो कुछ विश्व में कार्य है उस कार्य के लिए भी अच्छी तरह से डिसर्नमेंट कैपेसिटी है, तो आपका कार्य और अधिक सफल हो सकता और ही फायदेमंद हो सकता है सभी के लिए। और परख शक्ति के साथ साथ फिर निर्णय शक्ति, समझ लिया, परंतु नेक्स्ट स्टेप, आज मुझे अब क्या करना है, वो डिसीजन कैपेसिटी भी आज के संसार में हम चाहते हैं कि हमारी डेवलप होती जाए और फिर उसका हम प्रयोग करते जाए जीवन में। तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अपने लिए, परिवार के लिए, कार्य के लिए, देश के लिए, जो हम आज डिसीजंस लेंगे, ऐसे नहीं कि कल हम उसको चेंज कर लेवे, कल हम सोचे नहीं ये तो मैंने गलत डिसीजन लिया अभी तो मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं, अच्छी तरह से परख लिया, शांति में परमात्मा की याद से समझ करके प्रोज एंड कॉन्स को वे करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटरनल स्ट्रेंथ, उसका जीवन में हर प्रकार से प्रैक्टिकल हमारे सामने कई बातें आती है जिसमें हमें वो स्पिरिचुअल पावर परमात्मा का होगा, तो फिर हमारे जीवन में बहुत फायदा हो सकता। तो मैं ये आशा रखती हूं कि आप और अपना स्टडी करते जाएंगे स्पिरिचुअलिटी को, परमात्मा की याद के द्वारा खुद में शक्ति बढ़ते जाएंगे, ताकि आपको वो इंटरनल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस कैपेसिटी बढ़ता जाए, ताकि आपका हर कार्य सहज सफल होता रहे। अभी हम 3 मिनट के लिए उस परमात्मा की याद में बैठते हैं जिससे आपको वो महसूस हो कि वो किस तरह से शक्ति दे सकता। मैं अपने विचार बताते रहेंगी, आप अपने मन के संकल्प उस अनुसार दोहराते रहना। अंदर की यात्रा करते अंदर झांक करके जो अपने संकल्प भिन्न भिन्न लहरों में लहरा रहे हैं, उन सब बातों को समेट कर एक शुद्ध संकल्प में अपने मन को एकाग्र करते, मैं कौन हूं? मैं हूं आत्मा। मैं कौन हूं? मैं हूं ज्योति स्वरूप, शांत स्वरूप, आत्मा। मैं कौन हूं? मैं हूं परम पिता परमात्मा की संतान, परमात्मा ज्योति स्वरूप, निराकार, कल्याणकारी माता पिता। बुद्धि को उसकी याद में एकाग्र करते देह का भान छूट गया, आत्म स्मृति में परमात्मा के सन्मुख है। परमात्मा द्वारा शांति सागर, शक्तिदाता, पवित्रता का सागर मुझ आत्मा को सागर की लहरों में ये सब कुछ अनुभव होता है। शांति के सागर की लहरों से आत्मा शांत स्वरूप, सर्वशक्तिवान शक्ति दाता के नजदीक आने पर आत्मा में शक्ति की किरणें भरती जा रही, पवित्रता के सागर द्वारा आत्मा को पवित्रता की लहरें पहुंच रही, जिससे आत्मा शीतल, शांत, सर्वगुण संपन्न बन जाती। यही संबंध जोड़कर वापस इसी साकार संसार के क्षेत्र में आते, अभी उस संबंध को ध्यान में रखते, उस शक्ति को साथ लेकर अपने संकल्प, वचन और कर्म करते। ओम शांति।
Wow, today's session was really fruitful. We thank all our speakers for your wonderful revelations. Dear viewers, we shall meet again tomorrow at 10 a.m. to inform you about the various initiatives of Education Wing of Brahma Kumaris. Dr. Mohit Gambhir from New Delhi, Dr. B.K. Pandemani from Madurai, Professor Mukesh Agarwal from Jaipur, Sister Sudesh from Gurgaon and Professor Dr. Itikon Vatana from Thailand will join us in tomorrow's session. So don't forget to switch on to your televisions and devices. Raja Yoga online course classes is education e-conference ke baad 3 June se Zoom app ke dwara Hindi aur English bhashaon mein karai jayengi. जो भी भाई बहने ये क्लासेस करने के इच्छुक हैं, वे हमारे स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। क्लासेस के टाइमिंग्स आपको WhatsApp के द्वारा सूचित किए जाएंगे. Wait, 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 don't go. We have two Grammy awardees coming after this, Pandit Vishu Mohan Bhatt and Mr. Ricky Cage. Let us watch this amazing musical jugalbandi between both of them. Enjoy this pre-recorded video. See you tomorrow. Namaste. Om Shanti.
Awakening to a new way of living.